सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संग आज यहाँ अल्बर्टा के इस एडमंटन शहर में आप सभी के दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। एक ऐसा सुंदर दृश्य जो देखने को मिल रहा है, जहाँ सुंदर भावनाओं के कारण इस दृश्य को सुंदर कहा जा रहा है, और इन्हीं भावनाओं का स्थापन हर जीवन हर हृदय में हो, उसके लिए आप सभी मिल बैठे हैं यहाँ, और सभी का इस परोपकार में योगदान हो रहा है। ये यात्रा 24 तारीख से आरंभ हुई, जब दिल्ली से रवानगी हुई और सीधा फ्रैंकफर्ट जर्मनी, वहाँ पर 25 तारीख संडे को यूरोपियन समागम का आयोजन हुआ, और फिर उसके बाद चंद रोज़ यूके इंग्लैंड में बिताने को मिले, चाहे वो लंदन, चाहे इरिथ कैंट या फिर बर्मिंगम वेस्ट मिडलैंड का, जहाँ 30 तारीख को विशाल समागम हुआ, और वेरी नेक्स्ट डे ऑन द 31st रीच टोरंटो इन द इवनिंग, एंड आई गॉट ए चांस टू meet and see so many saints, and on the 1st of September Sunday there was a big congregation organized over there, and then on to Montreal for less than 24 hours, just one night spent there, and from there went to Winnipeg, Manitoba. And there too, my visit was after a long gap of 25 years. And there too, I got a chance to meet local people and all those saints who are working hard to spread the message of love, of compassion, of brotherhood. And then on to Calgary, and then there too, spending just one night. And now, last evening, reaching Edmonton. My this visit is after a gap of 2 years. I was here last in 2011. And since 1985, I have been visiting mostly after a gap of 1 or 2 years, or sometimes after a gap of 3 years. Although, as I was mentioning last evening, my very first visit to Canada was way back in 1973, 40 years, a long time now. And I have been getting chance to visit various parts of the globe apart from India. As you know, India is a vast country, and most of my time is spent in India traveling by road, try to reach the rural areas, not just the metropolitan cities. That's why I choose traveling thousands of miles by road. And I get a chance to see firsthand that how people are living in various places. Though there is paucity of so many worldly things or basic necessities, but at the same time I do see the warmth and love in their hearts. So this trip, which is outside of India, as I said, it started from Frankfurt, Germany, and a few days in England, and then Canada from 31st evening, and tomorrow leaving Canada for Los Angeles, America, till 18th, few cities in America like Los Angeles and Denver, and then on to Washington, D.C., New York, and then on way back to India, a day in England once again. So today, these moments which we are passing over here are so blissful. We all have gathered here to strengthen the human values, and I am indeed thankful to Mr. Shori and Mr. Bhadwaj in their individual capacity and as the role which they are playing to serve the community, to serve the province and the country. And through them, the greetings which are sent here by worthy Premier of Alberta and worthy Prime Minister of Canada. My best wishes to the Premier, Prime Minister, Mr. Shori and Mr. Bhadwaj. And I pray to God Almighty that may God give them all the success in coming times so that they may play the role which they are doing with more successes in achieving the closeness of the ethnic groups which reside in this country, which is required everywhere for that matter. We want peace, we want love. As I was mentioning a few days back in Winnipeg probably, that we want peace, but we want peace of the living and not of the grave. Grave, somebody is in the grave and you visit the graveyard, it is so peaceful. But we want peace of the living, where people are alive and who are residing and coexisting. We want peace. So for that we have to let go various things which we carry on and on and on, which ought to be left out, which ought to be disposed of. But human weaknesses, we just strongly hold on to them. We do not let it go. So as I said that if there is a learning process, there is also an unlearning process. We have to learn and we have to unlearn, and by saying unlearn, it means that we have to let go. We have to let go hatred, we have to let go narrow-mindedness, we have to let go lust and greed and stop being egoist. We have to let go the ego, which is proving devastating. So much upheavals taking place in various parts of the globe. People fighting each other in the name of caste, color, religion, and nationalities, regionalism. A divided lot we are, although God gave us birth on this one planet Earth. But we are all divided. And as is the slogan of the mission, that, and as has been strongly brought to the notice of all, that we should think deeply that religion, what's the qualities of religion and what's the meaning of religion, what we can say is the true religion. So that religion basically has to bring people closer. Religion is a uniting force and not a dividing force. Religion unites and never divides. This has been the slogan of the mission for many decades. What we are seeing today only I read a news from India, Uttar Pradesh, Muzaffarnagar. There's a curfew enclamped over there because there are riots riots taking place and more than 20 people died in that violence. And that violence, once again, the fight between two religious groups. So that has been happening so long, and innocent people are the ones who suffer. So religion unites and never divides. But religion today has become a strong dividing reason or force. तो आओ सत्संगत, जो आज हम संसार के हालात देख रहे हैं, संसार में जो लोग इस कदर एक दूसरे से बटे हुए हैं, जो दीवारें इंसान और इंसान के दरमियान खड़ी हैं, इंसान एक दूसरे का दर्द बांटने की बजाय एक दूसरे को पीड़ा देता चला जा रहा है, और इस तरह से दर्द बांटने की भावना ये दिलों में बस जाए, ये वास्तविकता में इंसानों को इस ओर प्रेरित किया जा रहा है। जो वास्तविकता में इंसान इन भावनाओं से वंचित होकर इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं, उन भावनाओं का इस जीवन में होना ज़रूरी है। और वास्तविकता में इन भावनाओं का ना होना ही ये हमारे लिए नुकसान का कारण बन रहा है। और जो भावनाएं हमारे दिल में गहरे उतरी हुई हैं, वो वास्तविकता में सिवाय पीड़ा के नुकसान के और कुछ प्रदान नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रयास, ये जतन हो रहा है कि इंसान उन भावनाओं को अपने दिल में बसा ले, और उन भावनाओं को दिल में बसाकर वो इस जीवन के सफ़र को इस कदर तय करे कि संसार को सुंदर रूप देने का योगदान देता रहे। सभी के ऊपर ये उत्तरदायित्व तो है, ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब इंडिविजुअल्स, इकाइयाँ जब अपने आप में अपने आप को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, ईच पर्सन थिंक्स हिमसेल्फ टू बी इम्पॉर्टेंट इन अ वे, सो इफ ईच इंडिविजुअल कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी इम्पॉर्टेंट, देन एट द सेम टाइम ही शुड रियलाइज दैट ही हैज़ ऑल्सो सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो उत्तरदायित्व, वो जिम्मेदारियाँ हमारी बन जाती हैं एज ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, कि इस दुनिया को, इस संसार को हमने सुंदर देन देनी है। ये ईच इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर किसी का उत्तरदायित्व है। अगर तुम अपने आप को विशेष मानते हो तो फिर ये भी एहसास करो कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी भी है। और सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड जब कहते हैं, उसमें फिर तुम एक इंडिविजुअल फैमिली मेंबर के रूप में भी हो, तुम सोसाइटी समाज के रूप में भी हो, तुम मुल्क देश के लिए भी तुम्हारे मन में हित का भाव रहे और उस तरह से उस मुल्क के लिए हमेशा बेहतर करो और बेहतर सोचो। और इसी प्रकार से जो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड का जो ग्लोबल जो हमारा रोल है, वो भी हम उसी सुंदर रूप में रहकर पेश करें, अपने आप को निभाएं। तो इस प्रकार से हम, हमारी विशेषता होगी। जैसे ये भी अंग्रेजी में कहावत है कि इट इज़ नाइस टू बी इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी नाइस। यू गेट इम्पॉर्टेंस बिकॉज ऑफ वेरियस वर्ल्डली अचीवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स, इट्स वेलकम, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दोज अचीवमेंट्स, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू स्ट्रेंथन द ट्रू वैल्यूज इन अ लाइफ। यू आर अ डॉक्टर, यू अचीव्ड इन योर फील्ड, वेलकम, बट इफ यू आर दैट डॉक्टर who is removing healthy kidneys from somebody's body by making use of his ignorance or just deceiving him and his family, which he is not giving voluntarily. You are just exploiting the situation. Although you are a doctor, medical wise you have perfection in your surgery, no flaws at all. But are you a human? Do you have those values? इसीलिए जो शेर अक्सर कहा जाता है कि कुछ भी बनो मुबारक है, पहले तुम इंसान बनो. कि कुछ भी बनो मुबारक है, स्पोर्ट्समैन वेलकम एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट इन द स्पोर्ट्स फील्ड, यू हैव अचीव्ड अ लॉट. बट व्हाट अबाउट सेलिंग योर टीम्स बाय जस्ट मैच फिक्सिंग? सो यू gained something but lost more than that. तो कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले तुम इंसान बनो. कि इंसान होना बहुत ज़रूरी है. ये वजूद जिस्मानी हमारा इंसान का है, लेकिन हमारी फितरत ही हमें सही इंसान साबित करेगी. हमारी प्रवृत्ति हमें साबित करेगी इंसान होना. और वही इंसानी चाल चलने के लिए ही तो गुरु पीर पैगंबरों ने इंसान से उम्मीद की और मार्ग निर्देश दिए कि इंसान केवल वजूद और जिस्मानी रूप में इंसान ना रहे, इसकी चाल और इसकी फितरत भी इंसानी हो. ये थोड़ी देर पहले भी आपने श्रवण किया, चाहे वो यंगस्टर्स थे या बच्चे थे, चिल्ड्रन थे या फिर ग्रोन अप्स थे, वो सब ने इसी और ही ध्यान दिलाया कि हम उन वैल्यूज़ को अपने जीवन में लाएं. उसके बगैर हमारा जीवन बेमायने हो जाता है. उसके बगैर हमारा जीवन जीवन भी नहीं कहलाता है. जैसे ये भी कहावत है कि ए पर्सन हैज़ नॉट स्टार्टेड ट्रूली लिविंग इफ ही cannot rise above his individualistic concerns. कि वो उससे ऊपर अगर नहीं उठेगा, केवल अपने आप तक ही अगर खुदगर्जी वाली सोच बनाए रखेगा, तो सही मायनों में वो जीवन जी नहीं रहा है. He is not truly living. अगर केवल और केवल वो अपने आप तक अपने आप को सीमित रखता है, वो सही जीवन वही कहलाता है जो इस प्रकार से अपने आप को निभाता है कि वो औरों के भी काम आता है, तमाम वातावरण को सुंदर बनाने में योगदान देता है. तो उस जब तक उस संकीर्णताओं से, वो सीमित से दायरे से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक वो जीवन जीवन नहीं कहलाता है. तो इसीलिए ऐसा जीवन ये हर कोई जी पाए, यही एक शुभकामना, ये अरदास और प्रार्थना की जाती है कि दातार ऐसी कृपा करो हर इंसान को सुमति मिले, हर इंसान को ये एक अवस्था प्राप्त हो ताकि इंसान सही मायनों में जी पाए. केवल सांस लेने को जीवन नहीं कहा जाता है. कि सांस ले रहा है इंसान तो जीवित है, मरा है नहीं. केवल सांस लेने को जीवन नहीं कहा जाता है, जीवन कुछ और होता है. और वो जीवन जिसको जीवन कहा जाता है, वो जीवन होता है एक डिवोशन वाला, वो जीवन होता है एक प्यार वाला, वो जीवन होता है कंपैशन वाला, वो जीवन होता है टॉलरेंस वाला, वो जीवन होता है हार्मनी वाला. जो ये सारे गुणों से युक्त है तो वो जीवन जीवन कहलाने लायक होता है. वरना तो जीते हुए भी हम मृतक ही होते हैं. इवन वाइल लिविंग वी आर मोर अ डेड पर्सन. इफ वी डू नॉट हैव लव इन आवर हार्ट्स, इफ वी डू नॉट हैव कंपैशन फॉर अदर्स, इफ वी आर इनटॉलरेंट टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, कलर, नेशनैलिटी, रिलीजन, on attires. So we have to know the true meaning of life, and we have to start living. तो इस प्रकार से हमने वो जिंदगी प्राप्त करनी है, हमने इस जीवन को जिंदगी देनी है. जीवन और जिंदगी एक चीज मानते हम, लेकिन जीवन यानी कि हम जी रहे हैं, तो जीवन को हमने जिंदगी देनी है, यानी कि जीवन में हमने जान डालनी है, जिंदगी देनी है उसको, तभी हम जिंदा कहलाएंगे. तो इस जीवन को जिंदगी हम दें, और इस प्रकार से हम तमाम दुनिया भर के लोग, भिन्न भिन्न मुल्कों में बसने वाले, भिन्न भिन्न भाषाओं वाले, सभी इस प्रकार का ये जीवन ये जी पाए. यही एक अभिप्राय है, यही मकसद है ऐसे समागमों का, ऐसे आयोजनों का, ताकि ये जो दृष्टि हमारी बन पाए, हमारी भावनाएं ये बन पाए, ताकि हम बाकी का जो जीवन का सफ़र है हमारा, उसमें हम अकॉर्डिंगली हम अपने आप को निभा पाएँ. हमें प्रेरणा मिलती है ऐसे आयोजनों से, वी गेट मोटिवेटेड बाय सच ओकेजन्स विच मोटिवेट अस टू मूव फॉरवर्ड टू लिव अ लाइफ विच इज़ फ्रूटफुल फॉर आवर ओन सेल्फ एंड fruitful for others too. So we get motivated, we get encouraged, because we are fed with such thoughts which are so beneficial for us. So that brings about a great change, and we start caring. We start caring for others, we start feeling the pain of others, and we try to reduce the pains of others. तो इस प्रकार से हमें सत्संग में मोटिवेशन मिलती है, ऐसे वचनों को सुनते हैं हमें प्रेरणा मिलती है, और हम एहसास करते हैं कि वाकई ही हमारा जीवन बेमायने ना रह जाए, इसको भी कोई मीनिंग मिल जाए, इसको भी मायने मिल जाए. इस प्रकार से ये संतों का संग, ये हम हर किसी के जीवन में एक क्रांति लाता आया है. पहले भी किसी युग में, किसी दौर में, किसी सदी में गुरु पीर पैगंबर जब जब भी इस दुनिया में आए, भिन्न भिन्न रूपों में आए, तो हर दौर हर युग में उनकी देन का महत्व ये कायम है, आज कलयुग में भी. और इंसानों से यही उम्मीद की जाती है कि इंसान उसी और ही बढ़ते चले जाएंगे, इंसान एक ऐसे कदमों को धरेंगे कि वाकई ही इस धरती को सजाने के रूप में उनका एक एक कदम है. और अचीवमेंट्स, जैसे पहले कहा कि चाहे चांद पर पहुँचे हैं या मार्स पर पहुँचे हैं या कहीं और भी आगे निकल जाएं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इस धरती के ऊपर एक सही ढंग से अपने कदमों को धरें, इस धरती के ऊपर हम एक सही ढंग से अपने आप को निभाएं. तो इस प्रकार से महापुरुषों के ये कथन, महापुरुषों की ये प्रेरणाएं, ये लगातार मिल रही हैं, और जो वाकई ही सूझवान होता है वो इसको दरगुजर नहीं करता है, वो उसको इग्नोर नहीं करता है, वो उसकी तरफ गौर करता है, और गौर करके फिर उसको अपना लेता है, फिर उसको जीवन में ढाल लेता है, और फिर उस प्रकार से इस जीवन के सफ़र को वो तय कर लेता है. तो ऑल दो जो चारों तरफ के वातावरण हैं, जो हालात हैं, उसमें तो एक पेसिमिज्म जाग जाती है कि कहाँ सुधार होने वाला है, बिगाड़ ही बिगाड़ है, कुछ तो सवर नहीं रहा है, तो वहाँ पर पेसिमिज्म आ जाती है. लेकिन As I was mentioning a few days back, I quoted Martin Luther King Jr., who once said that even if I come to know that tomorrow the world is going to be going to pieces, I will still plant my apple tree. So that is optimists. That is optimism. And saints and sages, they didn't lose hope. As has been said, I do not remember, probably Thakur Rabindranath Tagore, a great poet and saint from India who got Nobel Prize too. He once said that each child who is born brings a message that God has not lost hope from mankind. So each child born brings a message. We hope that yes, this child who is born now, and as he grows, he will be full of virtues and he will truly represent humankind. Two colors he will get, and he will make this world a better place. So once again, coming back, that it is not responsibility of others, we each are responsible to bring about that change. To saath sangat, yahi ek ardas prarthana hai, ki datar kripa kare, sabhi ko taufeeq de, taaki sabhi is prakar se इस जीवन को अपने सजा लें, सवार लें, और जहाँ कहीं पर भी रहते हैं वहाँ वहाँ ही इस वातावरण को एक सुंदर रूप ये देते चले जाएं। ऐसी तौफीक, ऐसी शक्ति, ऐसी विजडम, ऐसा विवेक, ऐसी सूझबूझ ये हर किसी को प्रदान हो, यही एक शुभकामना और अरदास के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा, क्योंकि समय उसी जगह हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमने इस सत्संग का समापन करना है, और 2 बज गए हैं तकरीबन, और शब्दों को और आगे ना बढ़ाते हुए अंत में फिर से ये अरदास करते हुए और अपनी खुशी जाहिर करते हुए दास आपसे इजाज़त चाहेगा। अरदास ये जैसे पहले की के चारों तरफ एक प्यार भरा वातावरण बने, सभी चैन और सुकून से जिएं, चारों तरफ भाईचारे की भावना हो, सभी एकता के सूत्र में बंधें, और सभी ग्लोबल फैमिली इसके ट्रू मीनिंग को सर अंजाम दें, और इसी प्रकार से सभी घरों में सुकून और चैन हो, और चारों तरफ दुनिया के हर मुल्क में रहने वाले लोग तरक्की करें, जहां उनको सुख मिले वहां पर तमाम मुल्कों के लोग इसी प्रकार से एक प्यार के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करें। और खुशी फिर से जाहिर करता है जो यहां एडमंटन में आकर आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हुई। I am very happy to see you all here. I once again express my happiness and gratitude for all of you who have gathered here. You took out time from your various engagements. We have counselors and other citizens also of Alberta and this Edmonton city. So I am very glad and very thankful for your cooperation for strengthening these values, and let's move together to achieve it. Satsangaji Dhan.